निक ने मिस्टर मुखर्जी और प्रियल के बीच हुई पूरी बातचीत तो नहीं सुन पाई थी, लेकिन आखिरी कुछ बातें सुनकर उसे ये अनुमान हो गया था कि प्रियल मिशन से जुड़े किसी काम से बाहर जाने वाली थी। वो बिना उसे कुछ बोले बाहर चला गया। प्रियल को उसके इस बर्ताव से हैरानी हुई। उसने कहा, अरे वाह, पहली बार इन्होंने मुझे गुस्से में होने के बावजूद कुछ नहीं कहा। लगता है इन्हें समझ आ गया है कि इस मिशन का हैंडल करना कितना ज़रूरी है। वैसे बच्चों को तो नेक संभाल ही लेंगे, फिर भी आरोही को मैसेज करके बोल देती हूँ कि वो यहाँ आ जाए। बाहर भी ठंड पड़ रही है, जैकेट भी डालना पड़ेगा। प्रियल ने आरोही को मैसेज करके घर पर आने के लिए बोल दिया था। वो मिशन पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उधर निक बच्चों के पास था। निक ने कहा, ये लो बच्चों, लैपटॉप और हेडफोन्स, इसमें तुम गेम खेलने के साथ म्यूजिक भी सुन सकते हो। मैं बस अभी आया, प्लीज रूम से बाहर मत आना, ओके? नील ने पूछा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? उसके पूछते ही न्यू ने भी पूछा, और गुड़िया कहाँ है? निक ने कहा, मुझे गुड़िया से कुछ जरूरी बात करनी है, तब तक तुम लोग गेम खेलो, मैं बात कर सकता हूँ ना? नील ने कहा, ओके, लेकिन आप जल्दी आना। मुझे फिर से आपसे गाना सुनना है, आप सुनाओगे ना? न्यू ने कहा। निक ने न्यू के बालों पर फेर करके बोला, हाँ बच्चों, नहीं बस मुझे थोड़ा टाइम दो। दोनों बच्चों ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। निक बच्चों को गेम्स में उलझाकर प्रियल के रूम में आया। वहां उसने देखा कि वो बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। निक ने रूम में आते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। प्रियल ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं निक? बच्चे बाहर ही हैं, वे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, उन्हें अभी तक नहीं पता कि हम। निक ने गुस्से में उस पर जोर से चिल्लाया, ओ जस्ट शट अप प्रियल, क्या मैं जान सकता हूँ इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? वो मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, मिस्टर मुखर्जी का कॉल आया था, उन्हें किसी जगह से कुछ लीड मिली है, प्रियल ने सब सच सच बता दिया। निक ने कहा, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, मैं किसी और को बोल देता हूँ, अंकित चला जाएगा या कोई और, लेकिन तुम नहीं। प्रियल चिल्लाकर बोली, पागल हो गए हो आप, आपको नहीं करना तो मत कीजिए ना, पर मुझे क्यों रोक रहे हो? और आपके कहने से मैं रुक ही ना जाऊँ कहीं, और मेरे होते हुए तुम चली ही ना जाओ कहीं, इसके लिए मुझे तुम्हें बांध कर भी रखना पड़े तो वो भी करूंगा, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक डॉक्टर वाला आइडिया है, प्रियल ने चौंकते हुए कहा। क्या? निक ने अपने पॉकेट में से एक छोटी सी बोतल निकालकर प्रियल को दिखाई। क्लोरोफॉर्म गुड़िया, चलो गुड नाइट बाबा, आओ तुम्हें सुला दूं। प्रियल निक से दूर हो गई। ये क्या बचपना है, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप ये बोतल मुझे दीजिए। निक ने प्रियल को कसकर पकड़ लिया। मेरी कैद से निकलना इतना आसान नहीं है मिस शर्मा, प्रियल छटपटाते हुए बोली। छोड़िए, मुझे देर हो रही है निक। निक प्रियल को कसकर पकड़कर खड़ा हो गया। प्रियल ने खुद को छुड़ाने के लिए निक के पेट पर जोर से किक किया, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो कुछ कदम दूर हो गया। निक ने गुस्से में कहा, जितना चाहो उतना मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैंने अच्छे से सुना था तुमने मिस्टर मुखर्जी से जो कहा था, इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि इसमें जान जाने का रिस्क है। आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो मेरे साथ चलिए, और रही बात बच्चों की तो मैंने आरोही को कॉल कर दिया है, कुछ देर में आ जाएगी वो, और मारिया आंटी भी आज घर पर ही हैं। निक ने थोड़ा सोचा और फिर रोकने के लिए कहा, ओके तुम रहने दो, मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं, आपको मुझे साथ लेकर चलना पड़ेगा, और बोलते हुए प्रियल जल्दी से भाग कर आई और कमरा बाहर से बंद कर दिया। बाय बाय निक, आरोही आ जाएगी, बच्चों का ख्याल रखिएगा, एंड डोंट वरी, अंकित सर मेरे साथ होंगे। निक ने अंदर गुस्से में चिल्लाया, नो प्रियल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। निक चिल्लाता रह गया जबकि प्रियल वहां से जाने लगी। तभी उसे बच्चों का ख्याल आया और वो उनके कमरे में गई तो उसने देखा कि दोनों बच्चे कानों में हेडफोन लगाकर गेम खेल रहे थे। प्रियल ने सोचा, आपका प्लान आप पर ही उल्टा पड़ गया निक, अब आप कितना भी चिल्लाओ बच्चों तक आपकी आवाज नहीं आएगी। प्रियल बच्चों के पास जाकर बोली, नील, न्यू, बच्चों मुझे बाहर जाना पड़ेगा। नील और न्यू ने अपने अपने हेडफोन निकालकर कहा, सॉरी हम कुछ सुनाई नहीं दिया। आरोही मासी आती ही होगी, तब तक तुम दोनों निक के साथ रहना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। न्यू ने कहा, ओके आप आरोही मासी को भी मना कर दो, हम निक के साथ रह लेंगे। नील बोला, और आप भी जल्दी आ जाना। प्रियल ने सोचा, पहले तो इन्होंने कभी भी मुझे खुशी से जाने का नहीं कहा, और अब कितने आराम से बोल दिया कि हम निक के साथ रह लेंगे। फिर उसने बच्चों से पूछा, ओके निक मेरे कमरे में है, तुम लोगों का गेम कब खत्म होगा? बस 10 मिनट बाद, प्रियल ने कहा। ठीक है, गेम खत्म होने के बाद उसे मेरे रूम से बाहर निकाल देना, वो मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, वो कुछ काम कर रहा है ना इसलिए। नील और न्यू उसके कहने का मतलब नहीं समझे, फिर भी उन्होंने हामी भरी और फिर से गेम खेलने लगे। प्रियल बच्चों के कानों में फिर से हेडफोन लगाकर वहां से चली गई। उसके जाने के लगभग 10 मिनट बाद आरोही भी आ चुकी थी। उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी तो वो भागकर दरवाजा खोलने गई। आरोही ने दरवाजा खोलते हुए कहा, नील, न्यू, बच्चों तुम्हें यहाँ किसने बंद कर दिया? जरूर ये उस मारिया आंटी ने किया होगा, उसे तो मैं देख लूंगी। निक ने बाहर आकर कहा, आरोही प्रियल कहाँ है? अचानक निक को देखकर आरोही घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा,
मुझे कुछ नहीं पता सर, बच्चे कहाँ हैं? तभी नील और न्यू भी कमरे से बाहर आ गए। नील ने आरोही को देखकर कहा, आरोही मासी आ गई आप? न्यू ने निक से पूछा, आपका काम खत्म हो गया निक? आरोही मासी, आपने निक को डिस्टर्ब कर दिया। गुड़िया ने कहा था कि वो कुछ काम कर रहे हैं, तो डोर ओपन करके उन्हें डिस्टर्ब मत करना। निक ने अपने मन में कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया प्रियल, एक बार वापस घर आओ फिर तुम्हें बताता हूँ। उसने आरोही से पूछा, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? देखिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। प्रियल की किए की सजा आप हर बार मुझे नहीं दे सकते। आरोही अभी भी घबरा रही थी। न्यू ने पूछा, आरोही मासी, आप निक से इतना घबरा क्यों रही हैं? आरोही, क्योंकि अभी तुम इन्हें जानती नहीं हो ना, तुम्हें क्या पता ये कितने डेंजरस हैं? नील ने कहा, चलो हम मिलकर गेम्स खेलते हैं। निक ने कहा, आरोही मासी कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाकर लाएगी? आरोही, हाँ सर। वो वहां से जाते हुए बड़बड़ा रही थी, पता नहीं प्रियल मुझे निक सर के साथ छोड़कर क्यों भाग गई, जबकि वो अच्छे से जानती है मुझे इनसे कितना डर लगता है। निक बच्चों के साथ तो था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी प्रियल में लगा था। डबल स्टार। उधर प्रियल मिस्टर मुखर्जी की भेजी हुई लोकेशन पर अंकित का वेट कर रही थी, तभी उसके पास मिस्टर मुखर्जी का कॉल आया। प्रियल ने कहा, हेलो मिस्टर मुखर्जी, मैं कब से यहाँ अंकित सर का वेट कर रही हूँ, आप जानते हैं ना हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मिस्टर मुखर्जी, सॉरी मिस शर्मा, वो मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया था कि अंकित सर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर मैं अकेले ही अंदर जा रही हूँ। मिस्टर मुखर्जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं आप वापस आ जाइए, वहाँ खतरा है। खतरा? लाइक सीरियसली? ये जगह खाली पड़ी है, मुझे नहीं पता, मैं अंदर जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ सस्पिशियस लगा तो प्लीज आप बैकअप टीम रेडी रखिएगा। ओके, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको अंदर जाना चाहिए। प्रियल ने मिस्टर मुखर्जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। उधर मिस्टर मुखर्जी ने एक छोटी बैकअप टीम रेडी करवा ली थी, ताकि कहीं कोई खतरा हो तो बिना टाइम वेस्ट किए वहां पहुंचा जा सके। प्रियल एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में पहुंच गई, जहां कोई नहीं था।
प्रियल बोली, मिस्टर मुखर्जी भी ना बेवजह घबरा रहे थे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। उसने उस जगह को अच्छी तरह देखा, वहां कोई मौजूद नहीं था। कोई है यहाँ? कोई भूत, चुड़ैल या कोई डायन? प्रियल जोर से चिल्लाई। किसी का कोई जवाब नहीं आया। प्रियल वहां टॉर्च लेकर वो जगह देखने लगी, लेकिन आधे घंटे छानबीन करने के बावजूद उसे वहां कुछ नहीं मिला। प्रियल बोली, पता नहीं मिस्टर मुखर्जी को ये घटिया सी लीड देता कौन है, यहाँ तो एक चीटी भी नहीं है। यार, बेवजह निक को नाराज कर दिया, घर जाऊंगी तो वो अलग से सुनाएंगे और बच्चे नाराज होंगे सो अलग, जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ। प्रियल खुद से बात करते हुए वहां से बाहर की तरफ निकल रही थी कि उसने देखा सामने एक ट्रक रुका। उसे देखकर प्रियल वहीं पोल के पीछे छुप गई। प्रियल ने कहा, मुझे मिस्टर मुखर्जी को बैकअप के लिए बोल देना चाहिए, क्या पता बाद में मौका मिले या नहीं। प्रियल ने बिना टाइम वेस्ट किए मिस्टर मुखर्जी को हेल्प के लिए कॉल किया। उसके बाद वो बाहर आकर उन लोगों को छुप कर देखने लगी। वहां सिर्फ तीन आदमी थे। उनमें से एक आदमी बोला, यहाँ कोई आता जाता तो नहीं है ना रॉनी? रॉनी ने जवाब दिया, नहीं श्याम दादा, ये कोल्ड स्टोरेज काफी सालों से खाली पड़ा है, लेकिन आपने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं है ना? नहीं, जब से जन्नत बाजार पर रेट पड़ी है भाव को किसी पर विश्वास नहीं है, उन्होंने खास मुझे अपने विश्वास पात्र ड्राइवर धनुष के साथ यहाँ भेजा है, हम दो के अलावा तीसरा सिर्फ तू है। बोलते हुए श्याम ने रोनी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहा, और तूने गद्दारी की है ना, तो सफाई देने का मौका भी नहीं दूंगा, उससे पहले सफाया कर दूंगा। प्रियल ने श्याम के हाथों में गन देखी तो उसने भी अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल ली। वहां का माहौल देखकर साफ नजर आ रहा था कि वहां कोई बड़ी गड़बड़ थी, लेकिन क्या ये प्रियल को समझ नहीं आ रहा था। श्याम चिल्लाकर बोला, धनुष भाऊ सामान बाहर कढ़ा, सामान को बाहर ले आओ। धनुष बाहर निकला और ट्रक का दरवाजा पीछे से बोलते हुए जोर से चिल्लाया, चालाक चालाक। प्रियल को श्याम और धनुष के बीच हुई बातचीत समझ नहीं आ रही थी, उसके बावजूद वो वहां पर खड़ी होकर उन लोगों को देख रही थी। उसने देखा कि धनुष ट्रक में से बाहर निकला और पीछे की तरफ गया। वहां उसके साथ लगभग 25 से 30 लड़कियां थीं, जिनके मुंह और हाथ बंधे हुए थे। उनकी उम्र लगभग 10 से 18 साल के बीच थी। सब प्रियल को समझ आ रहा था कि मिस्टर मुखर्जी किस लीड की बात कर रहे थे और यहां अकेले आने में इतना खतरा क्यों था। रॉनी उनके पास खड़ा था। उसने कहा, आप टेंशन मत लीजिए दादा, आप इस कोल्ड स्टोरेज में इन लड़कियों को एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। अभी एक घंटे बाद सीमा पार सामान डिलीवर होगा, उनके साथ इन लड़कियों को भी भेज दिया जाएगा और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। श्याम ने जवाब दिया, अच्छा आप तुम जाओ, मैं और धनुष भाऊ यहाँ की निगरानी कर लेंगे, किसी को इस बारे में पता चला तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, फिर पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। रॉनी ने हाँ में जवाब दिया और वहां से चल दिया। प्रियल अभी भी एक सुरक्षित जगह पर छिपी हुई थी। उन दोनों ने सभी लड़कियों को उस कोल्ड स्टोरेज में बंद करके खुद भी उसके अंदर निगरानी चले चले गए। प्रियल ने सोचा, मुझे कैसे भी करके अंदर जाना होगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं बैकअप का इंतजार करूं, कहीं ये इन्हें लेकर चले गए तो पूरी जिंदगी यही गिल्ट रहेगा कि मैं इन्हें बचा नहीं पाई। अब ये लड़कियां ही मेरी और खुद की यहां से निकलने में मदद करेंगी।
प्रियल की ट्रेनिंग अच्छे से हुई थी, इसलिए वो जानती थी कि इस तरह की स्थिति को कैसे हैंडल किया जाता है। वो पहले भी जन्नत बाजार में सबकी नजरों से छुपकर बाहर जाती थी। श्याम और धनुष को पता भी नहीं चला कि कब प्रियल दबे पांव स्टोरेज के अंदर आ चुकी थी। वो दोनों वहां पर बैठकर शराब पी रहे थे, जबकि प्रियल उनकी नजरों से छुपकर उन लड़कियों के पास जा पहुंची। प्रियल ने उन लड़कियों के पास जाकर दबी आवाज में कहा, देखो मैं यहाँ तुम लोगों को बचाने आई हूँ। हम लोग इतनी सारी हैं और ये सिर्फ दो। अगर हम चाहें तो इनका आराम से मुकाबला कर सकते हैं। मैंने बैकअप टीम के लिए कॉल कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी यहाँ पहुँच पाएगी। इसलिए जो करना है वो हम लोगों को ही करना होगा। ये लोग तो वैसे भी नशे में है, इनके पास हम इतनी लड़कियों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होगी। प्रियल बोले जा रही थी, तभी एक लड़की ने इशारे में उन्हें खोलने को कहा। प्रियल बोली, ओ सॉरी, मैं आप लोगों को खोलना तो भूल ही गई। प्रियल ने अपने पॉकेट से एक चाकू निकाला और उन लोगों के हाथों की रस्सियां काटकर उनके मुंह को खोला। उनमें से एक लड़की ने पूछा, तुम तो जन्नत हो ना? हाँ, तो मुझे कैसे जानती हो? क्योंकि मैं भी कुछ दिनों के लिए जन्नत बाजार में गई थी, लेकिन तुम तो बोल भी नहीं सकती थी। अब ये सब क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया। प्रियल बोली, मैं तुम्हें अपने बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना समझ लो कि इन जैसे बुरे लोगों से निपटने के लिए कई बार इन्हीं के इलाके में घुसना पड़ता है। प्रियल उन लोगों से बात कर रही थी कि तभी श्याम और धनुष उसके पीछे खड़े थे। श्याम ने पीछे से आकर प्रियल के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, ओ तो तुम हो वो विभीषण जिसने जन्नत बाजार की लंका लगाई थी। अच्छा हुआ तुम भी हमारे पास खुद से चलकर आ गई। फिर वो अपने साथी की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, भाव इसे तो पता भी नहीं कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। हाँ, इसको अलग से बेचेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। वैसे भी इसके बारे में किसी को पता भी नहीं, ऐसा समझ लेंगे कि ये हमारा बोनस है, धनुष ने जवाब दिया। प्रियल कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन दोनों ने बंदूक के नोक पर उन सबको वापस बांध दिया, लेकिन इस बार उनके साथ में प्रियल भी वहीं पर थी। ये यहाँ आई है मतलब पुलिस भी कुछ देर में पहुंचती ही होगी। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो गाड़ी निकाल, हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, धनुष ने कहा। और इसी के साथ वो वहां से निकलने की तैयारी करने लगे।